जय राधा माधव कुंज विहार
Hare Hare
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. राधा दामोदर की जय, कार्तिक मंथ की जय, यशोदा दामोदर की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर ब्रह्मानंदे हरि हरि ओम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय।
नमो भगवते वासुदेवाय।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तविंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऐसा बैठे ना सब, चलेगा चलेगा, कथा सुनते समय चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। हम उनके विषय में कथा सुन रहे हैं ना, सब लोग एंगल चेंज करो। दामोदराष्टकम नाम स्त्रोतम दामोदराचरणम नित्यम दामोदराकर्षिम पठेत सत्य व्रतोदितम। कार्तिक महीने में प्रतिदिन भगवान दामोदर की पूजा और सत्यव्रत ऋषि द्वारा गाए श्री दामोदर अष्टकम नामक स्तोत्र का पाठ करना चाहिए, जो भगवान दामोदर को अत्यंत प्रिय और उनको आकर्षित करने वाला है। तो हम नित्य रूप से प्रतिदिन हम दामोदर मास में या कार्तिक महीने में हम भगवान को दीप दाने उत्सव प्रोग्राम हम कर रहे हैं अलग अलग घरों में। तो हमने अभी तक इस अष्टकम सत्यव्रत मुनि के द्वारा जो अष्टकम लिखा गया है, सत्यव्रत मुनि के द्वारा जो अष्टकम की रचना की गई है, हम इस अष्टकम के ऊपर थोड़ा विचार विमर्श हम कर रहे हैं। भगवान के कुछ लीलाओं को सत्यव्रत मुनि ने जो गाया इस अष्टकम में लिखा, जो रचा, उनके अनुसार ही हम कुछ स्मरण करने का प्रयास कर रहे हैं। और आगे आ जाओ ना, क्यों डर लग रहा है? पास में आओ, रोज बोलना पड़ता है, आगे आ जाओ, फिर पीछे वाले फिर आएंगे, फिर लेट ये होता है। तो हो गया, बोलू मैं अभी? आप लोग बोलना बंद करेंगे तो मैं बोलूंगा। ये थोड़ा सा कम करो, नहीं तो ज़्यादा चिल्लाना पड़ेगा। एक पॉइंट कम कर दो, है कम करने वाला? एक पॉइंट माता जी कम कर दो, बस आवाज़ नहीं करने का, आवाज़ नहीं करने का, पंखा भी कम कर दिया, ठीक है। तो हम नित्य रूप से इस दामोदर अष्टकम के ऊपर सत्यव्रत मुनि ने जो लिखा उन अष्टकम को हम थोड़ा सा समझने का प्रयास कर रहे हैं, या फिर भगवान के कुछ लीलाओं को स्मरण करने का प्रयास कर रहे हैं इस अष्टकम के द्वारा। तो हमने कहाँ तक अभी तक पहुँचे? हम छः नंबर तक कंप्लीट हो गया, सातवां और आठवां आज दोनों करेंगे, सातवां और आठवां दोनों, क्योंकि कल नहीं है ना। किधर है दिव्यदान कल? कोई किसी ने बताया नहीं ऐसा? हाँ, तो फिर आज सातवां और आठवां दोनों कंप्लीट कर लेते, ताकि हमारा जो ये प्रण था वो कंप्लीट हो जाए। तो सत्यव्रत मुनि ने अभी तक हमने क्या देखा पिछले एपिसोड में? तीसा क्या सुना पिछले कल क्या सुना? कहाँ हमने खत्म किया, कुछ याद है कुछ थोड़ा बहुत? हाँ, और आपको क्या याद है?
कृष्ण भगवान को भी आंखों से देखना चाहते थे ना?
हाँ, ये बड़ा अच्छा याद रखा इन्होंने, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आप माता जी आप कल नहीं आए थे? कल नहीं आए थे उधर?
हाँ,
तो उधर परसों वाला हाँ, भक्त प्रबल भक्त के पाले पढ़कर प्रभु के नियम बदलते देखा, बहुत सुंदर। तो जैसे कि अभी विजय प्रभु ने बताया कि कैसे भगवान को देखने की जब इच्छा प्रकट किया उन्होंने,
पिछले श्लोक में हमने क्या देखा कि सत्यव्रत मुनि कहते हैं नमो देव दामोदर अनंत विष्णु, भगवान के नामों का कीर्तन कर रहे हैं, स्मरण कर रहे हैं। क्यों स्मरण कर रहे हैं? इस लालसा से स्मरण कर रहे हैं कि भगवान अभी हमको दर्शन देंगे, हमारे सामने प्रकट हो जाएंगे। इस प्रकार के ये इच्छा रखकर वो भगवान के नामों का कीर्तन, उनके ज्यादा से ज्यादा नाम का कीर्तन करना प्रारंभ किए। और साथ साथ में यह भी बताया कि मैं कितना दुखों से ग्रसित हूँ और आप मुझे दर्शन दीजिए ताकि ये सारे दुखों से मैं पार पा सकूं। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पे छोड़ा था कि मान लो भगवान कहे ऐसा, कि ऐसा थोड़ी ना मैं किसी के सामने कभी भी प्रकट हो जाता हूँ। तब सत्यव्रत मुनि बहुत सुंदर सी बात आज के श्लोक में कहते हैं। देखिए ये जो भगवान की लीला जो है ना, बहुत ही मन को मोहित करने वाली है। हम इसका कितना भी गायन कर ले, कितना भी कीर्तन कर ले, हम कभी भी उनकी सुंदरता का बखान कर ही नहीं सकते हैं। जैसे कि मैं आपसे पूछूं कि क्या टाइम हुआ है, घड़ी नहीं, घड़ी देख के बताओ। कभी भी हम कभी जब किसी से टाइम पूछते हैं ना, तो वो टाइम जो बताता है ना, एक्चुअली वो एग्जैक्ट टाइम नहीं है। क्यों? क्योंकि बोलते बोलते 2 सेकंड निकल गया है ना, बोलते बोलते 2 सेकंड निकल गया। तो कभी भी हम किसी को जैसे टाइम एग्जैक्ट नहीं बता सकते कि घंटे मिनट और सेकंड में नहीं बता सकते, क्योंकि जैसे ही बोलना शुरू होगा तो 2-3 सेकंड तो निकल ही जाता है। इसी प्रकार भगवान की लीलाएं जो है ना, और उनकी सुंदरता इतना दिन पर दिन बढ़ते जाता है कि हम कितना भी बखान कर ले उसका वो खत्म नहीं होने वाला है। कितना भी गुणगान कर ले उनका, उनकी सुंदरता का कभी भी समाप्त नहीं हो पाएगा, कभी भी उसको वर्णन करके हम पूरा नहीं कर पाएंगे। कहते हैं कि अनंत शेष, अनंत काल से, अनंत मुखों से क्या कर रहे हैं, भगवान का गुणगान गाते ही जा रहे हैं, लेकिन आज तक भगवान का सुंदरता का बखान, उनकी लीलाओं का बखान वो नहीं कर पाए। सब अनंत शेष हो, शेष नहीं कर पाए तो हम फिर कहां से शेष कर पाए। तो भगवान की जो है सुंदरता है ना, ये बहुत ही आश्चर्यमय सुंदरता है उनकी सुंदरता। वास्तव में उनकी सुंदरता का जो दर्शन कर लिया तो इस संसार की जो हम सुंदरता के पीछे में पागल है वो भूल जाएंगे। तो वास्तव में भगवान की सुंदरता, मैं एक कथा बताता हूं आप लोग को। एक कथा है साउथ का, साउथ में एक व्यक्ति रहा करते थे जिनका नाम था दासरथी। दासरथी नाम के, आइए वेलकम वेलकम, सब लोग बर्थडे सेलिब्रेट करके आए ना, आइए। तो मैं क्या बोल रहा था, दासरथी, भगवान की जो सुंदरता है ना, हम कितना भी उनका बखान कर ले वो कभी भी खत्म नहीं होने वाला है। साउथ में एक दासरथी नाम के एक व्यक्ति थे, वो अपनी पत्नी से बहुत आसक्त थे, बहुत ही सारे, और विशेष करके अपनी पत्नी के सुंदरता के ऊपर बहुत मोहित थे, वो बहुत ही मोहित थे। वर्णन आता है कि वो इतना सुंदरता के पीछे पागल थे उसके, कि दिन रात केवल उसके मुख का ही दर्शन किया करते थे और दूसरा कुछ देखना ही नहीं था उनको, केवल अपनी पत्नी का ही मुखों का दर्शन किया करते थे। और यहां तक कि उसको कुछ तकलीफ न होकर के हमेशा उसको चामर भी डुलाया करते थे। चामर, चामर नहीं समझते, पंखा, क्योंकि मच्छर मक्खी आते थे ना, तो उसके चेहरे से हटाया करते थे। वो मक्खी मच्छर उठते तो उनको द्वेष हुआ करता था, क्योंकि मेरी पत्नी के सुंदरता को बिगाड़ रहे हैं लोग, तो एक पंखा लेके हमेशा हाँकते रहते थे। इतना आसक्त थे वो पत्नी के प्रति, उसके सुंदरता के प्रति इतने मोहित थे। वर्णन आता, बहुत डिटेल वर्णन है, कि इतना मोहित थे कि उसका क्या, सब लोग देख के बड़ी निंदा किया करते थे कि क्या इतना स्त्री के प्रति इतना पागल हो चुका है, लोग निंदा करते थे। यहां तक कि वो जब ये घर से बाहर जब निकलते थे पत्नी, तो वो सुंदरता को इतना लालायित रहते थे, क्योंकि हमेशा कंटिन्यू उसकी सुंदरता को ही देखते थे। और जब घर से बाहर निकलते थे ना, तो छाता लेके उल्टा चलते थे और उसको लगाए रहते थे, छतरी वो चल रही है और ये उल्टा चलते थे और छतरी सामने पकड़े रहते थे और उसकी सुंदरता को देखते देखते चलते थे। सोचिए कि संसार में लोग क्या कहते रहेंगे उनको, इतने, लेकिन उनको कोई लेना देना ही नहीं था, एक ही उद्देश्य था कि उसके सुंदरता का पान करना, बस एक उद्देश्य था उनका, उनको संसार से कोई लेना देना है। जब कोई बेशरम हो जाता ना, एकदम बेशरम हो जाता, तो यही स्थिति उसकी आ जाती है, उसको संसार से कोई लेना देना नहीं रह जाता है। इतने आसक्त थे, इतना सेवा करते थे अपनी पत्नी की। आजकल ऐसे पति मिलेंगे नहीं, हाँ चिंता मत करिएगा। तो
जो भेजा वो भी ऐसे भी
तो इतने आसक्त थे वो अपनी पत्नी से कि एक दिन की घटना है कि वो भगवान रंगनाथ जी का दर्शन करने के लिए साउथ में रंगनाथ रंग श्री रंगम क्षेत्र में भगवान रंगनाथ विराजमान है वहां पे, उनका दर्शन करने की इच्छा हुई उनकी पत्नी का, उनकी पत्नी का दर्शन करने के, क्योंकि उनको इनको तो और किसी को दर्शन करना नहीं था, एक ही जीवन का लक्ष्य था कि मेरी पत्नी को बस देखता रहूं मैं, बस और दूसरा कोई लक्ष्य ही नहीं था। पत्नी की इच्छा हुई रंगनाथ जी का दर्शन करने के लिए, रंगनाथ जी का दर्शन करने के लिए पत्नी इच्छा व्यक्त की तो ये लेके जाने लगे। कैसे लेके जाने लगे? बस उल्टा, पत्नी चल रही है उल्टा चल रहा है, उल्टा चल रहे हैं और छाता पकड़े हुए हैं। मंदिर गए, मंदिर अभी रंगनाथ जी का दर्शन खुलने वाला है, वहां पे दरवाजे के सामने वो क्या कर रहे हैं? उल्टा खड़े है, पत्नी सामने तो दर्शन के लिए खड़ी है, ये उल्टा उसको दर्शन करते हुए खड़े है। मंदिर के अभी दर्शन खुलने वाला है, उल्टा खड़े लाइन में छतरी लेके। लोग सोच रहे हैं पागल है क्या, यहाँ पे सारे लोग भगवान का दर्शन करने के लिए आए, ये तो अपने पत्नी का छाता पकड़ के बैठा और अपनी पत्नी के केवल दर्शन कर रहा है, पागल हो चुका है क्या? लेकिन कौन बोले, कोई बोल नहीं रहा था, सबको तो एक ही उद्देश्य था रंगनाथ जी का दर्शन खुलेगा हम दर्शन करेंगे, ये सब याचिकाएं के लिए चक्कर में पड़ना है। लेकिन ये महात्मा पत्नी भक्त वो छाता लेके खड़े हुए हैं, सब लोगों ने दर्शन खुला, रंगनाथ जी का दर्शन भी कर रहे हैं, लेकिन इनको तो रंगनाथ जी से कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि उनको उधर क्या है, इधर सुंदरता में फंसे हुए हैं, उनको दूसरे से कुछ लेना देना नहीं है, केवल पत्नी को ही दर्शन कर रहे हैं। तो ये खबर जो है ना, किसी ने क्या किया, रामानुजाचार्य के पास पहुंचाया कि मंदिर में एक ऐसा व्यक्ति आया हुआ है जो कि अपनी पत्नी के दर्शन करते दर्शन कर रहा और छतरी पकड़ा हुआ और भगवान से कुछ लेना देना नहीं है। सब लोग ने जाके रामानुजाचार्य के पास एक्सप्लेन किया कि एक ऐसा व्यक्ति मंदिर के अंदर आया हुआ है। तो रामानुजाचार्य ने बोला ठीक है उसको बुलाओ, जरा उसको बुलाओ। तो रामानुजाचार्य के आदेशानुसार उनके जो भी शिष्यगण थे इस व्यक्ति को जाकर बोले कि तुमको गुरुजी बुला रहे हैं, रामानुजाचार्य बुला रहे हैं तुमको। तो इसने सोचा कि अरे अभी बुला रहे, कुछ तो बोलेंगे, कुछ तो कमेंट मारेंगे तो गया रामानुजाचार्य के पास और जाके बोला कि मैंने कुछ गलती कर दिया क्या? अरे गलती क्या, इतना फालतू गिरे काम कर रहा है, वो जाके पूछ रहा है कि गलती कर दिया क्या। तो रामानुजाचार्य को बोलने लगा, एक्चुअली जो कुछ था उसके मन में वो सत्य रूप से प्रकट कर दिया गुरु के सामने। इसलिए कहते हैं ना, गुरु के सामने कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, जो अंदर है वो सब गुरु के सामने व्यक्त कर देना चाहिए, तभी हमको एक पॉजिटिव उसका सोल्यूशन मिलेगा। तो उसने निष्काम भाव से उसके अंदर जो भावनाएं थी वो सब व्यक्त कर दिया रामानुजाचार्य के पास। रामानुजाचार्य सोचे कि तुम इतने पत्नी के प्रति आसक्त हो, इतने तो मेरे शिष्य लोग भी मेरी सेवा नहीं की है मेरे इतने सारे शिष्य लोग हैं, मैं इतना तो कोई मेरा भी सेवा नहीं किया है और तुम इतना पत्नी के पीछे इतना पागल हो। उसने बोला कि देखिए मैं एक चीज का दीवाना हूं, सुंदरता का, मुझे सुंदरता सुंदर चीज दिखता है तो मैं उसके प्रति आसक्त हो जाता हूं, और मैं इस संसार में मेरे पत्नी से ज्यादा कोई सुंदर मुझे दिखता ही नहीं, इसलिए मैं केवल मेरी पत्नी का ही दर्शन करते रहता हूं, उसकी सुंदरता का रस का पान करते रहता हूं मैं। रामानुजाचार्य बोले कि अच्छा तो मुझे एक बात बताओ, अगर तुमको इस सुंदरता से ज्यादा अच्छी सुंदरता और प्राप्त होगा तो तुम क्या करोगे? तो बोला इस्तीफा दे दूंगा उस दिन इस्तीफा दे दूंगा मुझे तो सुंदरता चाहिए, मैं सुंदरता का पान कर रहा हूं, अगर इससे बड़ी चीज हमको कुछ मिल जाता उसी दिन मैं रेजिग्नेशन लिख के दे दूंगा। तो बोले ठीक है। रामानुजाचार्य ने उसको दूसरे दिन बुलाया, तुमको इससे भी बड़ा सुंदर मैं दर्शन कराऊंगा, तुम आ जाना कल। रामानुजाचार्य जाके रंगनाथ जी के सामने प्रार्थना किए कि प्रभु एक ऐसे व्यक्ति को मैं बुलाया हूं जो कि पत्नी भक्त है, वो पत्नी की सुंदरता के पीछे पागल है, प्रभु आप अपना सुंदरता उसको दिखा दो ताकि वो इस प्रकार का जो भौतिक चीज के प्रति जो कि नश्वर है, आज है कल नहीं है, ऐसी चीजों के प्रति वो पागल है, आप उसको अपने ऐसी पागलपन आपके प्रति दिखा दीजिए, आप ऐसी सुंदरता आप उसको दर्शन करा दीजिएगा। प्रार्थना की, देखिए भक्तों के प्रार्थना में बड़ी ताकत होता है, इसलिए कभी कभी कहते हैं ना प्रभु जी हमारे लिए प्रार्थना करो, किसी भक्तों को जाके बोलते हमारे लिए प्रार्थना करो, क्योंकि कोई भक्त अगर भगवान से प्रार्थना करता है तो भगवान जल्दी सुनते हैं। तो रामानुजाचार्य के इस प्रार्थना से दूसरे दिन जब ही वो दासरथी, क्योंकि रामानुजाचार्य ने बोला था कि उससे उच्च को दर्शन कराऊंगा मैं तुमको, तो इस लालसा से वो रामानुजाचार्य के पास आया और ले गए उनको रंगनाथ जी के सामने खड़े किए। और रंगनाथ जी ने जो दर्शन दिया उनको ना, वो व्यक्ति दर्शन करके इतना पागल हो गया कि लोटने लगा उधर कि ऐसी सुंदरता मैंने जीवन में कभी भी नहीं देखा आज तक, और बहुत पछताने लगा कि मैं कहां पे फंसा हुआ था, और वही पे वो लोटपोट कर रोने लगा और रामानुजाचार्य के शरणागत हो गया और उनके शिष्यत्व को स्वीकार कर लिया है कि प्रभु आज हमारे आंखें आपने खोल दिया है, क्योंकि आपने जो सुंदरता आज मुझे दिखाया वास्तव में उससे ज्यादा इस संसार में और कोई सुंदर चीज नहीं है। और पागल हो गया और पूरा फुल टाइम वो रामानुजाचार्य और रंगनाथ जी की सेवा में लग गए। कहने का तात्पर्य यही है मेरा कि भगवान की सुंदरता ऐसी है जिसका वर्णन बखान कर पाना असंभव है। जिस दिन उनमें रति हो गया तो इस संसार की सारी सुंदरता जो है हमको फीकी पड़ने लगेगी। इसलिए कभी कभी देखते हैं कि ऐसे ऐसे भक्त लोग हैं, उनके पास बड़े बड़े ऐश्वर्य है। आप कृष्ण भावना में तो इस्कॉन से भी जुड़ेंगे ना, तो ऐसे ऐसे भक्त है जिनके पास पूर्ण ऐश्वर्य है, लेकिन फिर भी वो ऐश्वर्य को कुछ मानते ही नहीं, केवल दिन रात प्रभु के नाम में ही लगे रहते हैं। ऐसे कितने सारे उदाहरण है, कितने सारे भक्त है। तो इस प्रकार से भगवान की सुंदरता एक बार कोई दर्शन कर लिया तो फिर उसका नींद हराम हो जाएगा। मेरी नींद गई, मेरा चैन गया, सब हराम हो जाएगा उसका, रियल अगर दर्शन उनकी सुंदरता का प्राप्त कर लिया तो। इसलिए एक कवि कहते हैं कि सब इस संसार में अगर कोई सबसे ज्यादा सुंदर है तो कौन है, मेरा श्याम सुंदर। एक कवि की रचना है कि संसार में अगर कोई सबसे ज्यादा अगर सुंदर है तो मेरा है श्याम सुंदर, बाकी संसार के सारे लोग छछुंदर है। सब लोग छछुंदर के समान है, श्याम सुंदर की जैसी सुंदरता और कोई संसार में है ही नहीं। अगर उसका हमको पान मिल गया, और यही हम देखे कि कल इसी सुंदरता का दर्शन करने के लिए सत्यव्रत मुनि ने ये इच्छा व्यक्त करने लगे कि मुझे दर्शन दीजिए प्रभु, ऐसी सुंदरता का ऐसा रूप आप मेरे सामने प्रकट करिए, आप प्रकट हो जाइए मेरे सामने। तो सत्यव्रत मुनि की इच्छा, और उसके बाद भगवान मानो कहते हैं कि मैं थोड़ी ना ऐसा किसी के सामने प्रकट हो जाता हूं। तब सत्यव्रत मुनि कहते हैं कि नहीं प्रभु, आप प्रकट होते हैं। तब आज का श्लोक में, सातवें श्लोक में कहते हैं, कुबेर आत्मा जबद मूर्ते त्वया मुचित भक्ति भाज कृत च तथा प्रेमा भक्ति स्वकामे प्रयच्छ नमो छिग्रे हो मे स्त्री दामोदरे। सत्यव्रत मुनि बोलते हैं कि प्रभु आप प्रकट हुए हैं सामने, किसके सामने प्रकट हुए, तो कहते कुबेर आत्मजो, कुबेर के दो पुत्रों के सामने आपने प्रकट हुए हैं। कुबेर के जो आत्मज मतलब पुत्र, अपना पुत्र है, तो कुबेर के जो पुत्र थे ना उनके सामने प्रभु आप प्रकट हुए हैं। कुबेर आत्मजो बद्ध मूर्ते अद्दत त्वया मोचितो भक्ति भाजो कृतो च। अभी ये कुबेर के दो पुत्र कौन है थोड़ा उसके बारे में जानते हैं। लीला कुछ इस प्रकार सी है कि संसार के जो खजाना, जो भी धन संपत्ति है हाँ, उनका हिसाब किताब कौन रखते हैं, कुबेर जी रखते हैं। भगवान की संपत्ति का हिसाब किताब, भगवान ने अपनी संपत्ति का हिसाब किताब रखने के लिए ना कुबेर को अपना कैशियर बनाया है, वो हिसाब किताब बराबर रखते हैं। तो एक कुबेर के दो पुत्र थे जिनका नाम था नल कुबेर और मणिग्रीव, दो पुत्र थे उनके। तो हम देखते हैं कि इस संसार में अगर कोई धनी व्यक्ति है तो उसके पुत्र कैसे होते हैं, बगड़ेला होते हैं, गुजराती में बगड़ेला बोलते हैं। हाँ। हुए। तो इस संसार में हम देखते हैं कि जिसके पास धन संपत्ति ज्यादा होता है ना, तो उसके अंदर देखते हैं कि उसका बच्चा निश्चित रूप से बिगड़ा होता है। तो ऐसे ही अभी धन संपत्ति के इतने बड़े मालिक कुबेर जी, उनके पास इतना धन था, तो इनके जो ये दो पुत्र थे नल कुबेर और मणिग्रीव, ये दोनों बहुत बदमाश थे। दिन भर केवल बाप की संपत्ति को उड़ाते रहते थे, खुद तो मेहनत करते नहीं थे, क्योंकि यही समस्या होता है, जो धनी परिवार में किसी का जन्म हुआ तो क्या करता है, बाप की संपत्ति को ही उड़ाता है और कुछ काम धंधा करता नहीं, क्योंकि उसके पास इतनी संपत्ति पड़ा हुआ है, जिसके कारण क्या होता है, वो संपत्ति को यूज करते करते वो मदोमस्त हो जाता है, बिगड़ जाता है, गलत, बड़े से बड़े गलत कार्य करने लगता है। तभी एक कुबेर जी के दोनों पुत्र जो थे ना, इस धन संपत्ति का इस्तेमाल करते करते इतने मदोमस्त हो गए कि एक दिन की घटना है कि वो क्या करने लगे, कैलाश के निकट एक वन है, उद्यान में वहां पे बहुत सुंदर सा सरोवर है, उस सरोवर में वो स्नान करने के लिए गए। उस सरोवर में स्नान करने के लिए गए, लेकिन कैसा स्नान, कब स्नान करने, वो अपने बहुत सारे फ्रेंड सर्कल और बहुत सारे युवतियों, बहुत सारे लड़कियों के साथ वहाँ पे वो उस सरोवर में रहकर बहुत मस्ती करने लगे हेलो, और पिए हुए थे, मदिरा का पान किए हुए थे, और इतना मस्ती कर रहे थे, इतना मस्ती कर रहे थे कि उसी समय क्या हुआ, नारद मुनि उस सरोवर के तट से गुजर रहे थे। वे नारद मुनि जब उस सरोवर के तट से गुजर रहे थे तो उस समय क्या हुआ कि ये जो जितनी भी स्त्रियां थी वो तुरंत ही क्या किया, वो सरोवर से बाहर निकलकर, क्योंकि नारद मुनि आ रहे, एक भक्त आ रहे हैं उनके सम्मान के लिए, लज्जावश उन्होंने क्या किया, उस सरोवर से तुरंत बाहर निकलकर अपने कपड़े को ढक लिया, कपड़े को उठाया और पहन लिया। लेकिन ये क्या हुआ, स्त्रियां तो निकल गई लज्जावश, लेकिन ये जो दो पुत्र कुबेर के थे, ये मधुमस्त होकर धन इतना मदिरा का पान किए हुए थे कि उनको शुद्ध बुद्धि खो गया था, बिल्कुल ध्यान नहीं दिए। यही होता है जब व्यक्ति मदिरा का पान करता है ना, तो किसी को सम्मान नहीं करता है, कब किसको गाली बकेगा कुछ भरोसा नहीं, उसको शुद्ध बुद्धि रहती ही नहीं है। मैं बॉम्बे में जब रहता था तो रात्रि के समय ऐसा ही 9-10 बजे प्रोग्राम होता था, लेट कभी लेट नाइट ऐसा निकल के आ रहे थे, तो आते समय ऐसा ही रात को तो पीने वाले लोग ज्यादा मिलते हैं, उनकी उनका तो दिन तो रात को शुरू होता है, दिन रात को शुरू होता है ना उनका, तो पी के निकला हुआ था व्यक्ति और खूब अभी क्या क्या गाना गाता है, क्या क्या बकता है, उसको खुद को पता नहीं रहता है। तो ऐसा ही मैं दिख गया तो कुछ ना कुछ कमेंट करने लगा, महाराज इतना रात को आप किधर जा रहे हो आप किधर जा रहे हो, कौन से बार से निकल के आ रहे हो तो इस प्रकार का बड़े बड़े कमेंट देने लगा। मैं तो सुन के केवल हंस रहा था, क्योंकि उसको क्या पता वो क्या बोल रहा है, अभी उसका उतर है तब पता चले ना, वो तो खुद भी पता नहीं अभी रात्रि को कौन से नाले में गिर के पड़ा रहेगा, कुछ भरोसा नहीं, और देखने में एकदम टिपटाप, ऐसा नहीं कि कोई भिखारी था, बड़े घर का ही था, टिपटाप एकदम सूट बूट पहना हुआ एकदम ऐसा, और क्या बोल रहा है, बक रहा है। तो शुद्ध बुद्ध खो गए। ऐसे ही ये जो नल कुबेर और मणिग्रीव थे, दोनों इतना मदोमस्त हो गए थे कि नारद मुनि आए उनको कुछ फर्क ही नहीं पड़ा। नारद मुनि ने देखा कि इतने मदोमस्त, नारद मुनि ने उनके ऊपर कृपा करने का सोचा। देखिए नारद मुनि का भक्तों की कृपा किस रूप में होता है, नारद मुनि ने वहां पे उनको श्राप दिया। अभी प्रश्न उठता है, बेचारे वो तो मदोमस्त थे, काहे के लिए उसको फोकट का श्राप दे दिया, श्राप क्या दिया है? नारद मुनि ने श्राप ये दिया कि तुम लोग इतने मदोमस्त हो, तुमको शुद्ध बुद्धि नहीं है, खुद शरीर के ऊपर कपड़े, बिल्कुल नग्न थे वो लोग, बिल्कुल नग्न थे, बिल्कुल तुम लोग को ये पेड़ की तरह तुम लोग खड़े हो, बिल्कुल शर्म नहीं आता है, इसलिए तुम लोग पेड़ बन जाओ, श्राप दिया कि तुम लोग पेड़ बन जाओ। तो यहां सोच सकते हम कि नारद मुनि ने ऐसा क्यों किया, बेचारे सब ठीक है, उतरता नशा तो फिर समझ में आता तो कुछ बोलते तो सुधर जाते, लेकिन उन्होंने सीधा श्राप दे दिया। वास्तव में नारद मुनि, देखिए भक्तों का जो श्राप भी होता है ना, वो आशीर्वाद के समान होता है, इसलिए भक्त कभी गाली भी देते हैं ना, उसके लिए आशीर्वाद बन जाता है। इसलिए एक भक्त कहते हैं कि भक्तों की गाली घी की नाली, जितना पियोगे उतना बनोगे बलशाली। तो भक्त कभी डांटते भी ना, जैसे गुरु कभी डांटते भी है, कभी सुनाते भी है, या कुछ बोलते भी है ना कड़क शब्द ना, वो व्यक्ति के हित के लिए होता है। नारद मुनि ने यहाँ पे श्राप दिया, श्राप के वशीभूत होकर वो पेड़ तो बन गए, लेकिन उसका नतीजा देखिए, आज वो लीला को स्मरण कर रहे हैं सत्यव्रत मुनि, क्या हुआ देखिए। नारद मुनि ने श्राप दिया कि तुम लोग पेड़ बन जाओ, जाओ कितना था, हजारों साल तक तुम पेड़ बन जाओ, खड़े रहो नग्न ऐसा खड़े रहो, क्योंकि पेड़ बिल्कुल शर्माता नहीं है, खड़े रहता, खड़े रहो पेड़ के जैसा तुम लोग खड़े रहे, तुमको शर्म नाम की चीज ही नहीं है, पेड़ बन गए वो लोग। श्राप जैसे ही दिया, वो पेड़ में परिणित हो रहे थे, लेकिन उसी समय उनकी बुद्धि खुली, जैसे शराब पिया हुआ व्यक्ति बोलता बहुत कुछ है, लेकिन एक झापड़ जोर से मारो तो उसकी बुद्धि थोड़ा खुल जाता है ना अनुभव है नहीं ना तो अभी श्राप नारद मुनि का झापड़ पड़ा, क्या झापड़ पड़ा, क्या झापड़ पड़ा, श्राप लगा जब ही, तो उनकी बुद्धि खुली, तुरंत नारद मुनि के चरणों में गिर गए, प्रभु हमारे पर कृपा तो करिए, कम से कम ये कैसे इस पेड़ योनि से हम मुक्त हो पाएंगे। नारद मुनि बोले कि चिंता मत करो, तुम हो गए मुक्त हो गए, क्योंकि नारद मुनि का श्राप था। एक्चुअली नारद मुनि श्राप नहीं, एक्चुअली वो आशीर्वाद दिए थे उन लोगों को। तो अभी क्या हुआ, ये दोनों श्राप के वशीभूत होकर क्या बन गए, पेड़ बन गए। लेकिन पेड़ कहां पे बने पता है, नंद भवन में, नंद महाराज के आंगन में पेड़ बने। नंद महाराज जहां पे कृष्ण इतनी मधुर मधुर लीलाएं कर रहे, उस आंगन में यमल अर्जुन के नाम के वृक्ष बने, दो जुड़वे भाई जुड़वे के रूप में वहां वृक्ष के रूप में उनका जन्म हो गया। अभी ये दोनों वृक्ष के रूप में वहां पे खड़े हैं। अभी हुआ क्या, अभी हमने कहा खत्म किया था कि दामोदर क्या हुए, बधे हुए है। बलराम भी छुड़ाने का प्रयास किए, कोई सब लोग ने जो भी प्रयास किया, सब मित्र भी थे, सब अभी बेचारे बधे खड़े, अभी भैया बांधी हुई है, अभी कैसे छूटेंगे। इसलिए उन्होंने सोचा, अभी अकेले व्यक्ति तो कुछ ना कुछ तो सोचता है ना, अकेले व्यक्ति कुछ ना कुछ सोचता है। बलराम भी चले गए, दोस्त भी छोड़ के चले गए, अभी बधे है उकल के सामने अकेले बैठे हुए है, तो सोच रहे हैं। सोचते सोचते उनको विचार आया कि अरे नारद मुनि ने श्राप दिया था कुबेर के दोनों पुत्रों को, और नारद मुनि ने श्राप दिया था तो उनको उद्धार करना मेरा कर्तव्य बनता है। इस मेरे आंगन में वो दोनों पेड़ के रूप में बने हैं, इसलिए भगवान ने क्या किया, अभी उखल में बधे तो बधे थे, लेकिन अभी क्या किया, तुरंत उखल से वो खींचे और बधाई, उखल बधाई है और खींच के पैरों से चलने लगे, और उखल पीछे पीछे आ रहा है, अभी चलने लगे, बाहर निकले। मैया तो अंदर काम कर रही है, बाहर निकले तो बाहर दो पेड़ थे, दो पेड़ खड़े हुए थे बाहर। ये वही पेड़ है जिसको नारद मुनि ने श्राप दिया, कौन थे वो, नलकुबर मणिग्रीव, दोनों पेड़ के रूप में यहाँ पे थे। अभी भगवान नारद मुनि के उस श्राप को, उस आशीर्वाद को, या उस कृपा जो हुई थी इन दोनों के ऊपर, उसको स्मरण करते हुए भगवान वहां से क्या बोलते हैं उसको, बकवा क्या, घुटनों के बल चलते उसको क्या बोलते हैं गुजराती में, क्या बोलते हैं, हाँ बच्चे लोग जो घुटने के बल चलते थे क्या करते हैं उसको, हाँ घुटने बल चलते हैं हिंदू में, गुजराती में कुछ तो बोलते रहते ना,
हाँ
हाँ अच्छा अच्छा ओके ठीक है। तो भगवान भी ऐसा चल रहे हैं, और क्या वो उखल जो है पीछे बधा हुआ है, छूटा तो है नहीं, तो वो भी खींच खींच के आ रहे हैं। अभी हुआ क्या, वो पेड़ दोनों खड़े थे, उस बीच में भगवान तो निकल गए, लेकिन वो उखल आके उधर अटक गया, उधर अटक गया, और भगवान ने क्या किया, तुरंत खींचा वो दोनों पेड़, इतने विशाल पेड़ यमल अर्जुन दोनों धड़ाम से गिर पड़े पृथ्वी के ऊपर। उन दोनों पेड़ों में से ये दोनों जो कुबेर के पुत्र थे देवता के रूप में प्रकट हो गए, और बहुत सुंदर सुंदर भगवान की स्तुति करने लगे। इससे क्या पता चला कि नारद मुनि का श्राप भी आशीर्वाद के रूप में बना, और इनको, इन दोनों को भगवान का धाम प्राप्त हो गया, भगवान का धाम प्राप्त हो गया दोनों को, जो कि इतने गलत कार्यों में लिप्त थे, लेकिन भक्त की कृपा हुई, नारद मुनि की कृपा हुई, तो ये दोनों का मुक्ति हो गया, भगवत धाम चले गए। देखिए नारद मुनि, संसार में ऐसा लोग बोलते हैं कि नारद मुनि केवल इधर का उधर, उधर का उधर करते झगड़ा लगाते, ये थोड़ा इस रूप में फेमस है ज्यादा नारद मुनि, ऐसा नहीं है। नारद मुनि कभी भी वही कार्य करते जो भगवत इच्छा अनुसार ही कार्य करते हैं नारद मुनि, इसलिए तो पूरा सब जगह घूमने का उनको वीजा प्राप्त हुआ है नारद मुनि जो कि। और सौभाग्य हमारा क्या है पता है, हम ऐसे नारद मुनि की परंपरा में बैठकर बोल रहे हैं, हमारी जो परंपरा है ना नारद मुनि से चलते आ रही है। मैंने वर्णन करा था गीता कोर्स में ना, परंपरा का जो ब्रह्मा नारद सुर, उनसे ये परंपरा चलती आ रही है। तो हम जो यहाँ पे बैठे हैं नारद मुनि की परंपरा में बैठकर कथा का श्रवण कर रहे हैं। तो नारद मुनि जो कि विचरण करते हैं, एक्चुअली नारद मतलब, नारद शब्द ही देखेंगे हम ना, ना मतलब नहीं, और रद मतलब रद, कैंसल, ट्रेन कैंसल हो गई ना, रद्द हो गई बोलते ना तो नारद मुनि ने अगर किसी के ऊपर कृपा कर दिया, ना मतलब नहीं और रद्द मतलब रद्द कैंसल, नारद मुनि ने किसी के ऊपर कृपा कर दिया तो उसको नारायण भी भगवत धाम जाने से रोक नहीं सकते हैं। इस नारद शब्द का अर्थ हुआ, वो अगर कृपा कर दिया तो भगवान भी चाह के भी उसको रोक नहीं सकते हैं भगवान। और यहां तक नारद का दूसरा एक शब्द एक आचार्य बताते हैं कि ना मतलब नारायण, नार मतलब नारायण, नार मतलब नारायण कहते हैं, और द मतलब ददाती, जिनकी कृपा से वो नारायण को देते रहते लोगों को, उनको नारद बोलते हैं। तो ऐसे नारद मुनि के कृपा से ये जो कुबेर के दो पुत्र थे जो कि इतने मधुमस्त थे, वो भगवान के शाश्वत धाम में पहुंच गए। और यही बात सत्यव्रत मुनि बोलते हैं कि प्रभु आपने दर्शन दिया, दर्शन प्रकट हुए सामने, इन दोनों कुबेर के दोनों पुत्रों पुत्रों को आपने दर्शन दिया प्रभु कुबेर, इसलिए कहते कुबेर आत्मजव बद्ध मूर्ते वे यद्यत। आप बंधन में थे, आप बधे थे, लेकिन बंधन में रहते हुए भी दूसरे को बंधन से मुक्त कर दिया, जो कि पेड़ के रूप में इतने सालों से पड़े हुए थे। प्रभु आप तो बंधन में थे लेकिन बंधन से उनको मुक्त कर दिया। ये है नारद मुनि। एक्चुअली नारद मुनि की एक्चुअली विशेष कृपा, हमको याचना करते रहना चाहिए, क्योंकि ऐसे भक्तों को जब हम स्मरण करते हैं ना, स्मरण करने मात्र से हमारे अंदर बहुत सारा शुद्धिकरण हो जाता है। एक बार की घटना है कि महर्षि गालव ऋषि करके एक ऋषि हुए, ये घटना द्वापर के अंत की है। जब ही भगवान कृष्ण द्वारका में थे, राज कर रहे थे द्वारका में, उस समय की यह घटना है। गालव ऋषि उस सुबह का मॉर्निंग साधना वगैरह करने के लिए, नित्य क्रिया कर्म करने के लिए नदी के में स्नान करने गए, नदी में स्नान करने लगे। मैं ये कथा इसलिए बता रहा हूं कि नारद मुनि की कृपा देखिए कैसे होती है। नारद मुनि की कृपा ध्यान से सुनिएगा। महर्षि गालव ऋषि नदी में स्नान कर रहे हैं, सुबह का समय है। स्नान करने के पश्चात वो क्या कर रहे हैं, जल को हाथ में लेके जल अर्पण कर रहे हैं, ठीक है, जल को अर्पण कर रहे हैं। उसी समय हुआ क्या, एक गंधर्व, चित्रवत नामक एक गंधर्व ऊपर अपने विमान से जा रहा था, विमान से जा रहा था, और क्या किया उसने पता है, वो विमान पे बैठे बैठे उसने थूक दिया, वापी का रहा होगा विमान में बैठे बैठे, तमाकू गुटखा खाने वाला व्यक्ति होगा, ऊपर बैठे बैठे उसने क्या किया, थूक दिया। और जब थूका तो ऋषि जल अर्पण कर रहे तो उनके हाथ में आके गिरा। विचार करिए, वो ऋषि के हाथ में जैसे ही उसने आया, थूक गिरा, तो उसने ऊपर देखा गंधर्व, इतना क्रोध आया ऋषि को, वो चाहते थे ना तो उसको श्राप देके उधर ही भस्म कर देते, इतनी शक्ति थी उस ऋषि के पास, गालव ऋषि के पास। लेकिन उन्होंने श्राप नहीं दिया, बोले कि ये श्राप देके मैं अपनी तपस्या क्यों भंग करूं, क्या करता हूं, अभी भगवान तो उपस्थित है द्वारका में, राजा अभी उपस्थित है, तो मेरा काम है कि जाके राजा को कंप्लेन करना है, देखो उसको बताओ, सुधारो उसको, मैं इस प्रकार का अपना नित्य कर्म कर रहा था, उसने थूक दिया मेरे इधर, अभी तो कलयुग का प्रारंभ नहीं हुआ, असर दिखना शुरू हो गया द्वापर के बाद कलयुग प्रारंभ होने वाला था ना, ये तो द्वापर के अंत की बात है। बोले अभी तो वही तो कलयुग का प्रारंभ भी नहीं हुआ, ऐसे ही घटनाएं शुरू हो गई अभी से। गए गालव ऋषि भगवान के पास द्वारका में, द्वारका में जाके कंप्लेन किया कि मैं सुबह का नित्य ये सारे कार्य करके जल अर्पण कर रहा था, ये गंधर्व जो ना ऊपर से थूका मेरे हाथ में आया, हाँ उसको आप कुछ दंड दीजिए। ऋषि का इतना क्रोध था, क्रोध बस ही बोल रहे थे, वो बहुत क्रोधित थे। उनके क्रोध को देखकर भगवान ने क्या बोला पता है ऋषि को, ऋषिवर आप गुस्सा मत करिए, शांत हो जाइए, मैं निश्चित रूप से आपको, मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि ये कल मैं ना इस चित्रवत गंधर्व को जान से मार दूंगा, आप चिंता मत करिए, आप अपना भजन करिए, आप क्रोधित मत होए, क्रोध में मत होइए। अभी देखिए क्या हुआ, भगवान ने प्रतिज्ञा कर लिया। अभी प्रतिज्ञा को पूरा करना है तो निश्चित रूप से प्लान तो बनाना पड़ेगा, कैसे उसको मारना है, क्या करना है। तो उसी समय द्वारका में नारद मुनि आए, जब भगवान ये सोच ही रहे थे कि क्या करना है कैसे मारना है, तो नारद मुनि आए। नारद मुनि आए, भगवान को देखे कि आज तो भगवान कुछ अलग मूड में लग रहे हैं, पूछे कि प्रभु आज क्या कुछ टेंशन है क्या। बोला नहीं नहीं, मैंने गालव ऐसे ऐसे घटना घटा और गालव ऋषि को मैंने वचन दिया हूं कि वो चित्रवत गंधर्व को मैं मार दूंगा अभी। नारद मुनि ये बात जैसे ही सुने निकल पड़े वहां से द्वारका से, और द्वारका से निकल के कहां पे गए, उस चित्रवत गंधर्व के पास गए, बोले भाई पान गुटखा खाना छोड़ो चार नियमों का पालन करना शुरू करो, उधर कृष्ण ने प्रतिज्ञा लिया हुआ तुम्हारा मृत्यु होने वाला आज, कल शाम को तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, ये कृष्ण ने प्रतिज्ञा ले लिया है। जैसे ही सुना कि कृष्ण ने प्रतिज्ञा लिया, और कौन बचा सकता है अभी, जिसको राखे कृष्ण मारे कौन, और मारे कृष्ण राखे कौन, ये तो उसको अच्छी तरह से पता था, अब तो मैं बच नहीं सकता, इसलिए तुरंत उसने क्या किया, नारद मुनि का चरण पकड़ लिया कि आप मुझे बचा दीजिए आप मुझे बचाइए, मुझे नहीं मरना, आप मुझे बचाइए। अंततः नारद मुनि ने देखा बेचारा गंधर्व है, आखिर गाता किसके, गंधर्व का काम क्या होता है, बहुत सुंदर वाद्य मंत्र बताया बजाते हैं, मृदंग बजाते हैं, करताल बजाकर भगवान की स्तुतियां करते रहते हैं, कीर्तन करते रहते हैं। तो नारद मुनि ने देखा कि अंततः ये तो भगवान का कीर्तन करता रहता है, उनकी सेवा करता रहता है, इसलिए उन्होंने कृपा किया, वाला चिंता मत करो, मैं जो बोल रहा हूं करो, कल सुबह कल शाम को तुमको मारने वाले है ना, कल सुबह तुम उठ के यमुना स्नान के लिए जाना ब्रह्म मुहूर्त में, ब्रह्म मुहूर्त में सुबह उठकर यमुना स्नान के लिए जाना और वहां पे तुमको जो भी दिखे उससे तुम वरदान मांग लेना। कौन सा वरदान? न मरने का वरदान मांग लेना। तो बोला कि ठीक है, तुरंत अभी तो न उठने वाला भी उठेगा ना। सबको टेंशन हो रहा है संडे कैसे उठेंगे, मंगल आरती हो रहा है, आना है ब्रह्म मुहूर्त में, लेकिन अगर बताया जाए कि वहां पे कुछ ऐसी चीज मिलने वाली है तब तक तो सोएगा ही नहीं रात भर। तभी इसको तो जान बचाना है, इसको ब्रह्म मुहूर्त में उठा, उसको नींद कहा, अभी तो ब्रह्म मुहूर्त का इंतजार कर रहा है, कब ब्रह्म मुहूर्त शुरू हो। बस गया है यमुना स्नान के लिए, ब्रह्म मुहूर्त में गया स्नान करके, यही देख रहा है कि कौन आया इधर, अभी सुबह सुबह कौन स्नान करने के लिए खोज रहा है, कौन आ रहा है। लेकिन अभी इसको क्या किया, नारद मुनि ने ऐसा बताया और फिर तुरंत नारद मुनि कहां पे चले गए, सुभद्रा के पास गए। सुभद्रा जो कि अर्जुन की पत्नी है, द्वारका में अर्जुन से विवाह हुआ था, सुभद्रा कृष्ण की बहन है। सुभद्रा के पास गए, सुभद्रा को बोलने लगे कि हे देवी, कल ना ब्रह्म मुहूर्त में यमुना स्नान करने की बहुत महिमा है। बहुत महिमा, और महिमा बताया यमुना स्नान का, और वहां पे जाकर किसी को अच्छे अच्छे वर देने का भी बहुत महिमा है, वरदान देने की बहुत महिमा है। तो अभी महिमा सुनकर सुभद्रा बोले, मैं तो कल स्नान के लिए जाऊंगी। कल उठी वो भी स्नान के लिए, ब्रह्म मुहूर्त में यमुना के किनारे पहुंच गई। अभी वो भी स्नान की, चित्रवत गंधर्व ने स्नान किया और सीधा दंडवत मारा है सुभद्रा को, बोले कि मुझे वरदान दीजिए, कृष्ण मुझे मारने की प्रतिज्ञा लिए हुए, आज मैं मरने वाला हूँ। तो सुभद्रा ने बोला, चिंता मत करो, मैं आशीर्वाद देती हूँ तुमको, क्योंकि नारद मुनि ने बताया था ना आशीर्वाद देने की बहुत महिमा है। इसलिए उसने आशीर्वाद दिया कि तुमको कोई नहीं मार पाएगा। आशीर्वाद देके सुभद्रा भी चले गई, ये भी गंधर्व अपने घर पे चला गया। अभी हुआ क्या, सुभद्रा घर पे जाके अर्जुन को बोलती है, आज मैं चित्रवत को अभय दान देकर, वरदान देकर आई हूँ, तुम्हारा काम है उसका रक्षा करना अर्जुन को। अभी बेचारा पति परेशान, अभी अर्जुन और कृष्ण दोनों फ्रेंड है, मित्र है। अभी सुभद्रा ने क्या बोला, तुमको उसको बचाना है। संध्या होने लगा, शाम दोपहर के बाद अभी अर्जुन निकला किसको बचाने के लिए, चित्रवत को। भगवान निकले किसको मारने के लिए, चित्रवत को। भगवान निकले चित्रवत को मारने के लिए, अर्जुन निकला बचाने के लिए। दोनों पहुंचे एक साथ में पहुंचे तो कृष्ण बोले, अर्जुन तुम इधर। बोला कि इस गंधर्व को बचाना है मुझे। बोला, मैं मारने की प्रतिज्ञा लिया, क्या बात कर रहा है तुम, मैं मारूंगा उसको। बोला कि ना, आप नहीं मार सकते उसको, क्योंकि पत्नी ने वरदान दिया भाई, पत्नी वाक्य चित्ते करी। पत्नी ने बोला, अगर नहीं रक्षा किया तो मेरा जीना आराम कर देगी उधर। तो बोला कि देखो, मैंने प्रतिज्ञा लिया हो, मैं इसको मारूंगा। बोला कि आपको पहले मेरे को मारना पड़ेगा, फिर आप उसको मार सकते हो। तो बोला कि देखो अर्जुन, तुमको मेरे साथ युद्ध करना पड़ेगा। बोला, युद्ध करने के लिए तैयार हूं, जब तक मैं जीवित रहूंगा तब तक मैं इसके प्राणों की रक्षा करूंगा, आप मुझे पहले मारिए उसके बाद इसको मारिए। दोनों में विकृष्ण और अर्जुन में दोनों में भयंकर युद्ध छिड़ा, भयंकर युद्ध छिड़ा। गाल और ऋषि भी देख रहे हैं, क्योंकि तो वही देख रहे थे, भगवान ने प्रतिज्ञा किया हुआ तो वो देख रहे हैं ना, अभी देखने के लिए तो आएंगे ना कैसे मर रहा है वो, थूका था ना। तो अभी चित्रवत गंधर्व कभी खड़ा है, उसके प्राण की रक्षा करने के लिए अर्जुन उसकी रक्षा कर रहे हैं, कृष्ण उसको मारने के लिए उद्यत हुए। अभी दोनों में, अर्जुन और कृष्ण में भयंकर युद्ध छिड़ा। अभी ये दोनों, अभी अर्जुन कृष्ण का भक्त भी है, सखा भी है, दोनों के अंदर युद्ध छिड़ा। अभी ये युद्ध कहां परिणाम निकलने वाला है, कई दिनों तक युद्ध चला, कोई परिणाम नहीं। शिव जी ये देखकर उनके अपनी साधना में बैठे हुए थे, उन्होंने देखा कि भगवान क्या कर रहे हैं, उन्होंने अपनी साधना को छोड़कर कैलाश से वहां पे शिव जी प्रकट हो गए और रोके कि प्रभु आप क्या कर रहे हो। बोलो कि मैंने उसको ऋषि को वचन दिया हूं कि मैं इस चित्रवत गंधर्व को मारने का वचन दिया हूं और मैंने प्रतिज्ञा किया हूं, इसलिए मैं इसको मारूंगा, ये अर्जुन बाधा दे रहा है हमको। बोला प्रभु देखिए, ये युद्ध का निर्णय होने वाला नहीं है, नई निर्णय होने वाला है, आप तोड़ दीजिए ना। आप तो कितनी प्रतिज्ञा अपनी तोड़ते ही रहते हैं, अभी अभी महाभारत के युद्ध में प्रतिज्ञा तोड़ के आए हैं, आप तो अपने भक्तों के वशीभूत होकर प्रतिज्ञा तोड़ते ही रहते हैं, आपको क्या फर्क पड़ता है, तोड़ दीजिए अपनी प्रतिज्ञा को। तो इस प्रकार से शिव जी के रिक्वेस्ट करने पर भगवान ने विचार बदल दिया, ठीक अभी नहीं मारता हूं, अभी ये गंधर्व का रक्षा तो हो गया, लेकिन देख कौन रहा है, गालव ऋषि। वो अंदर अंदर, एक तो ये क्या हो गया, ये दोनों युद्ध करते करते आपस में फ्रेंडशिप हो गया फ्रेंडशिप हो गया। तो गालव ऋषि को बहुत क्रोध आ गया अब तो, क्योंकि गालव ऋषि उसी समय चाहते थे वो नदी स्नान के समय ही श्राप देके मार सकते थे, लेकिन राजा है करके उन्होंने कंप्लेन किया था, उन्होंने अपने सही तरीके से जाना सोचा था, लेकिन अब तो वो तरीका फेल हो गया, इसलिए उन्होंने बोला कि अब मैं इसको श्राप देता हूं। तुरंत अपने कमंडलू से वो गालव ऋषि ने जल लिया हाथ में और मंत्र से अभिभूत करने लगे कि ये जो चित्रवत गंधर्व है इसकी मृत्यु हो जाए। हाथ में जल लिया, उसी समय मंत्र का उच्चारण कर ही रहे थे फेंकने के लिए उसके ऊपर, उच्चारण कर ही रहे थे उसी समय सुभद्रा वहां पे आ गई। सुभद्रा आई वहां पे और सुभद्रा भी ऐलान करने लगी, अगर मैं पतिव्रता धर्म स्त्री धर्म का पालन किया हो, अगर पति धर्म स्त्री धर्म का पालन किया हो मैंने, अगर मैं पतिव्रता स्त्री हूं, अगर मैं स्वप्न में भी किसी पर पुरुष का दर्शन नहीं क्यों, व्हाट्सएप फेसबुक का तो बात ही नहीं, स्वप्न में भी स्वप्न में भी अगर दर्शन किसी पर पुरुष का दर्शन किया हो, अगर न किया हो, तो ये जो गालव ऋषि के हाथ में जो जल है ना, अगर मैं पतिव्रता स्त्री हूं तो गालव ऋषि के जल हाथ से गिरे ही ना, जल गिरे ही नहीं हाथ से। और वही हुआ कि गालव ऋषि के हाथ में जो जल था ना वो फ्रिज बन गया, बर्फ बन गया, गिरा ही नहीं जल। उस समय ऋषि का जो ये अहंकार था, क्योंकि अभी भगवान ने छोड़ दिया, जिसको अभी क्या है उसको मार सकता है कोई, तो ऋषि का भी अहंकार चला गया और वहां पे चित्रवत गंधर्व का रक्षा हुआ। लेकिन किसके कारण अच्छा हुआ, नारद मुनि के कारण हुआ। तो नारद मुनि कृपा किया तो ऐसा ऐसा घटनाएं भी जो टल जाती है व्यक्ति के जीवन में। तो एक गुरु अगर किसी के ऊपर कृपा करता है, एक भक्त कृपा करता है, तो निश्चित रूप से बड़ी समस्याएं उसके जीवन से निकल जाती हैं। तो इस प्रकार से अंत में ये इच्छा कर दिए भगवान के सामने कि आप दर्शन दीजिए, और भगवान और प्रमाण भी दे दिए कि आपने नल कुबेर मणिगुरु को, ऐसे व्यक्ति को भी आपने दर्शन दिया, प्रभु आप मेरे सामने प्रकट हो जाइए। इस प्रकार से उनकी ये जो लालसा थी अभी पूर्ण होने जा रही है, इसलिए अंतिम श्लोक में कहते हैं, अभी अंतिम कल नहीं होने वाला, इसलिए आज ही मैं इस अंतिम श्लोक को संक्षिप्त में बता देता हूँ, 5 मिनट केवल। अंतिम में अभी सत्यव्रत मुनि बहुत तीव्रता से भगवान को प्रणाम कर रहे, मानो उनको दर्शन हो चुका है, अब भगवान को प्रणाम कर रहे हो, या तो अभी कुछ ऐसा प्रणाम करके ऐसी बातें को बताने जा रहे हैं कि अब तो भगवान को दर्शन देना ही पड़ेगा। इसलिए कहते हैं, नमस्ते स्तो दामने स्फुर दीप्ति धामने त्वदीयोदरायात विश्वस्य धामने नमो राधिकाय त्वदीय प्रियाय नमो नन्त लीलाय देवाय तुभ्यम। सत्यव्रत मुनि कहते कि नमस्ते स्तु, भगवान को नमस्कार प्रणाम करते हैं। देखिए शुरुआत की है किससे, शुरुआत नमामि, नमामिश्वरम, शुरुआत किए प्रणाम से और अंत किससे कर रहे हैं, प्रणाम से कर रहे हैं। मतलब हमारा किसी भी कार्य का शुरुआत भी प्रणाम से होना चाहिए, और वो कंप्लीट भी हो गया तो जाके धन्यवाद देना चाहिए कि प्रभु वो कंप्लीट हो गया। हम ये पार्ट तो भूल ही जाते हैं, हमको कुछ चाहिए तो भगवान के पास जाते हैं, मिल भी जाता है, लेकिन मिलने के बाद उतने इतना रम जाते हैं ना कि धन्यवाद भी बोलना भूल जाते हैं। ये सबसे बड़ी समस्या है, यहां से सीखना चाहिए। सत्यव्रत मुनि शुरुआत भी किए प्रणाम से और अंत भी कर रहे प्रणाम से, इसलिए हर कार्य के शुरुआत और अंत में प्रणाम निश्चित रूप से होना चाहिए। आपकी कृपा से वो कार्य संपन्न हो गया, जाके धन्यवाद देना चाहिए। यहां से सीख, बहुत बड़ी सीख प्राप्त होती है। अभी क्या कहते हैं सत्यव्रत मुनि, नमस्ते तो दामने, दामने मतलब रस्सी, दाम मतलब रस्सी, क्योंकि रस्सी, अभी उस रस्सी को प्रणाम कर रहे हो। कौन सी रस्सी को प्रणाम कर रहे हो, जिससे भगवान बंधे हुए हैं, क्योंकि वो रस्सी साधारण रस्सी है ही नहीं, वो रस्सी में यशोदा मैया का प्रेम भरा हुआ है, क्योंकि भगवान को कौन बांध सकता है, यशोदा मैया बानी एक ही बल से बांधे, केवल प्रेम से, भगवान केवल प्रेम से बंधते हैं। इसलिए सत्यव्रत मुनि आज उस रस्सी को प्रणाम कर रहे हैं इस अंत में, कि रस्सी को प्रणाम करें, नमस्तस्तु दामने, मैं उस रस्सी को प्रणाम कर रहा हूं प्रभु, जिस रस्सी में माता यशोदा का प्रेम भरा पड़ा हुआ है, जिससे आप बंध गए, नहीं तो आज इस संसार के कोई भी ताकत आपको बांध नहीं सकती है, लेकिन फिर भी आप बंध गए एक ही कारण, कि उस रस्सी में प्रेम भरा हुआ है, इसलिए उस रस्सी को प्रणाम कर रहे हैं सत्यव्रत मुनि। आगे कहते हैं साथ साथ में वह भगवान के पेट को भी प्रणाम कर रहे हैं। पेट को क्यों प्रणाम कर रहे हैं? पेट को इसलिए प्रणाम कर रहे हैं, प्रभु आपको कौन बांध सकता है, आपके पेट के अंदर अनंत अनंत कोटि ब्रह्मांड सब उसके अंदर समाहित है। एक लीला स्मरण करा दूं कि जब यशोदा मैया, कृष्ण का कंप्लेन आया कि मिट्टी खाया है ना, ये ब्रह्मांड घाट की लीला है, कभी हम वृंदावन जाएंगे तो उस घाट पे लेके जाऊंगा जहां पे भगवान ने मिट्टी खाया था। आज भी प्रसादी के रूप में वहां पे मिट्टी मिलता है, आप उसको ग्रहण कर सकते हैं। तो जब ही मिट्टी खाया भगवान ने तो सब बालकों ने कंप्लेन कर दिया, पहुंच गया मैया के पास कि इसने मिट्टी खाया, तो मैया को विश्वास नहीं हुआ। लेकिन फिर बाद में मैया ने क्या बोला, तुम मुंह खोल पता चलेगा, क्योंकि कृष्ण तो बोले मक्खन भी खाते थे तो बोलते थे मैया मैं तो मक्खन नहीं खायो, क्या है भजन, मना ही करते थे, हालांकि खाए रहते थे। तब मैया ने सोचा कि ये तो मक्खन भी खाता है, मना करता है, मिट्टी भी खाया ही होगा, इसको खोल के देखते हो। मुंह खोल के जब मैया ने देखा तो क्या देखा पता है, जैसे ही भगवान का मुंह खोला तो एक नहीं कई मैया उसके अंदर दिख रही है, क्योंकि अनंत कोटि ब्रह्मांड भगवान अनंत अनंत लीला कर रहे हैं, अनंत कोटि ब्रह्मांड दिखने लगा, मैया स्वयं उसके अंदर दिखने लगी, एक नहीं कई सारे, क्योंकि अलग अलग ब्रह्मांड में अलग अलग रूप में है लीला चल रही है। कितनी सारा चीजों को दर्शन किया मैया तो एकदम दिग्भ्रमित हो गई, तुरंत अपना नजर हटा लिया, उसको लगा कि मुझे तो कुछ तो संभ्रम हुआ ऐसा, तुरंत कुछ तो गड़बड़ अशुभ हो गया लगता है, इसलिए कृष्ण को गौमूत्र से गोबर से इत्यादि नहलाने लगी। लेकिन सत्यव्रत मुनि पेट को क्यों प्रणाम कर रहे हैं? क्योंकि अनंत अनंत कोटि ब्रह्मांड आपके पेट में समाहित है प्रभु, लेकिन आज वो पेट मैया के प्रेम के कारण बध गया है, नहीं तो आपको कौन बांध सकता है, उस प्रेम के कारण वो पेट जो है आपका बंध गया है, इसलिए उस पेट को भी प्रणाम करते हैं। त्वया मोचितो भक्ति भाग नहीं त्वदीयो धरायत विश्वस्य धामे, पूरा विश्व ब्रह्मांड जिस पेट के अंदर है उस पेट को कौन बांध सकता है, लेकिन फिर भी आप प्रेमवश प्रभु बंध गए, इसलिए मैं उस पेट को भी प्रणाम करता हूं। अंत में सत्यव्रत मुनि एक ऐसी बात को प्रस्तुत करते हैं, तब तो भगवान निश्चित 101% प्रकट होने ही वाले हैं, ऐसी बात को बता रहे हैं। कहते हैं नमो राधिकाए त्वदीय प्रियाए, अभी किसको प्रणाम कर रहे हैं, अभी तक रस्सी को प्रणाम किया, पेट को प्रणाम किया, अभी किसको प्रणाम कर रहे हैं, राधा रानी को प्रणाम कर रहे हैं, क्योंकि सत्यव्रत मुनि को पता है कि भले से अब तक के जितनी भी प्रार्थनाओं वो दर्शन दे या ना दे, लेकिन मैं राधा रानी को प्रणाम करूंगा तो कृष्ण निश्चित रूप से हमको दर्शन देंगे, इसमें कोई दुराय नहीं है, कोई दुराय नहीं है, इसलिए नमो राधिकाए, राधा रानी को सत्यव्रत मुनि प्रणाम करते हैं। और वास्तव में देखिए जब कोई राधा जो है ना रास शब्द बोलता है ना, भगवान उसके पीछे भागने लगते हैं, रास शब्द बोलता है तो भगवान भागने लगता है, और धा जब बोलता है तो भगवान उसके सामने प्रकट हो जाते हैं, और वो भी पूछते किधर है राधा। इसलिए राधे राधे जब वो चले आएंगे बिहारी है ना, इतने सुंदर सुंदर भजन है, राधे राधे जब वो चले आएंगे बिहारी। तो इस प्रकार से सत्यव्रत मुनि अभी श्रीमती राधा रानी को प्रणाम करते हैं। एक्चुअल में श्रीमती राधा रानी के जो पास्ट टाइम है कृष्ण के साथ ना, ये तो इतनी मधुर मधुर लीलाएं हैं जो कि अभी इस जगह पे मैं तो उस लीलाओं का वर्णन नहीं करूंगा, लेकिन वास्तव में उसके उन लीलाओं को श्रवण करने के लिए कुछ हमारे पास योग्यता होना चाहिए। योग्यता ये होना चाहिए जब तक हमारा ये हम श्रद्धा को लेकर आए, सब लोग मोस्ट ऑफ नए नए लोग हैं, अपनी श्रद्धा को लेकर आए, यहाँ पे कृष्ण कथा वगैरह सुन रहे हैं, लेकिन स्टेप बाय स्टेप उसकी प्रगति होता है, आदो श्रद्धा तथा साधु, फिर साधु संगो करता है, फिर साधु संग करने से फिर क्या होता है, अनर्थ निवृत्ति होता है, उसके अंदर जो जन्म जन्म के जो पाप भरे पड़े हुए हैं धीरे धीरे वो पाप निकलने लगते हैं, स्टेप बाय स्टेप उसकी प्रगति होता है, जब ये अनर्थ निवृत्ति के बाद की स्थिति जो है तब जाके ये राधा और कृष्ण की लीलाओं का स्मरण चिंतन थोड़ा बहुत उसमें रमन कर सकता है, अन्यथा वो केवल अपराधी करेगा। इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं कि सर्वप्रथम उसको क्या करना चाहिए, एक कृपा प्राप्त करने के लिए भागवत के दसम स्कंद में इस राधा और कृष्ण की लीलाओं का वर्णन है, लेकिन दसम स्कंद को डायरेक्ट न पढ़ के पहले प्रथम से शुरुआत करके उसको दसम तक पहुंचना चाहिए। प्रथम से शुरुआत करेगा और दसम तक पहुंचेगा तो उन लीलाओं को अच्छी तरह से वो समझ सकता है, अन्यथा उसमें केवल काम भावना और विकार ही यही देखेगा वो। जैसे एक बालक है, अभी उसको बोलेंगे कि दसवीं का उसको सब्जेक्ट दे देंगे तो उसको कुछ समझ में आएगा, उस कब समझेगा, उस प्राइमरी से लेकर पढ़ते पढ़ते जाएगा तभी दसवीं का समझेगा, है ना। तो ऐसे ही दसवीं का समझना है तो प्राइमरी से पढ़ना प्रारंभ करना पड़ेगा। ऐसे ही भगवान की एक गुह्यतम लीला है जिसको प्रणाम कर रहे हैं आज श्रीमती राधा रानी को सत्यव्रत मुनि, जिसके कारण भगवान तो भाग के आए उनको दर्शन देने के लिए। हम उन लीलाओं को हम जब तक अन्य जो नौ पाठ भागवत के टोटल 12 स्कंद है, 9 स्कंदों तक हम उसका पाठ करके कंप्लीट करेंगे तब जाके हम दसम स्कंद की इन लीलाओं को समझ सकते हैं। इसलिए सत्यव्रत मुनि बहुत सुंदर सा कहते कि मैं श्रीमती राधा रानी को प्रणाम करता हूँ। हाँ, श्रीमती राधा रानी को प्रणाम करने मात्र से भगवान उनके सामने प्रकट हो गए। वास्तव में श्रीमती राधा रानी को कब हम प्रकट कर सके, उनको प्रणाम हम डेली कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आप सब लोग को बोला हूँ क्या करने के लिए, नाम जप करने के लिए। नाम जप क्या है वो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आपको बता दूं मैं कि इसमें जो हरे शब्द वो कौन है, श्रीमती राधा रानी है। हरे जो शब्द है ना राधा रानी है, तो हम राधा रानी से प्रार्थना करते, वही प्रार्थना यहाँ पे सत्यव्रत मुनि करते हैं, नमो राधिकाए, मैं राधा रानी को प्रणाम करता हूँ, क्योंकि बिना राधा रानी की कृपा से कृष्ण की कृपा नहीं प्राप्त हो सकती है। तो जो हम जप करते हैं उसमें सर्वप्रथम हरे शब्द जो है ना श्रीमती राधा रानी है, तो हम उसको प्रणाम करेंगे श्रीमती राधा रानी को, इस नाम का जप करेंगे तो निश्चित रूप से कृष्ण हमारे सामने प्रकट होंगे और निश्चित रूप से हमारे जीवन की जितनी भी समस्याएं हैं, हाँ जितने भी समस्या है दुख क्लेश, वो सब ऑटोमेटिक समाप्त होंगे। तो अभी मैं इतने दिनों में आप सब लोग को एक बहुत सुंदर सा फार्मूला दे दिया कि अभी दुख को समाप्त करना था क्या करना है, इतना तो सब लोग समझ गए हैं, दुख को समाप्त करना है तो क्या करना है। तभी बात यह है कि आप कितना दुख को समाप्त करना चाहते हो उसको उतना सीरियसली ग्रहण करिए और उस हरिनाम का जप करिए और इस संसार में परम सुखी बन जाइए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री दामोदर अष्टकम की जय, सत्यव्रत मुनि की जय, भगवान दामोदर की जय। आइए हम गायन करते हैं, तो सब लोग एंगल चेंज कर दीजिए ना, दामोदर की तरफ देखिए और अष्टकम का गायन करते हैं। तो टीसा आओ, पहले गाएगी फिर बाद में पीछे फिर आप लोग गाइएगा, चलो शुरू करो।
नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले भजमानम्।
जय श्री राधा दामोदर की जय श्री सुधा दामोदर की जय श्री गोविंदा की जय श्री गोपाल की हरे कृष्ण।